सब आग्रह ठीक नहीं था उनका, जट भरत जी के लिए ये आग्रह ठीक नहीं था, असत आग्रह, बेकार आग्रह था पिताजी का। जैसे मान लीजिए कोई हवाई जहाज से चल रहा है, तो हवाई जहाज से चलने वाले पुरुष पर रोड का नियम लागू नहीं हो सकता है, यहाँ ट्रैफिक हो गया तो ये सिग्नल है, तो यहाँ रोड खराब है, वहाँ क्या कहते हैं जर्किंग होगा, ये होगा वो, क्योंकि वो स्थल से परे है, उसके नियम दूसरे हैं। तो हवाई जहाज पर बैठा हुआ व्यक्ति रोड पर जो कार पर चल रहा है, बस पर चल रहा है, ये नियम उस पर लागू नहीं हो सकते। ये शौच अध्ययन व्रत आदि सब उनके लिए है जो देह के धरातल पर है। ऐसे जो देह से मुक्त हो गया है उसको भी साफ सुथरा रहना चाहिए, समाज में व्यवहार करना चाहिए, लेकिन यदि वह न करे तो कोई आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक नहीं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि असत आग्रह था, जब भरत जी के लिए ये असत आग्रह था। उनके पिताजी जो आग्रह कर रहे थे कि ये पढ़े लिखे और समाज के लायक हो जाए, विवाह कर ले, ये कर ले, ये सब बेकार फालतू। और पुत्रम अनुशास्य, इस तरह पुत्र को अनुशासित करते थे, सिखाते थे, लेकिन स्वयं तावत अनभिगत मनोरथ, अभी वो सोच ही रहे थे कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा अच्छा बनेगा, तब तक अनधिगत मनोरथ, मनोरथ तो पूरा हुआ नहीं, अनधिगत प्राप्त नहीं हुआ मनोरथ, बेटा तो वैसे ही जड़ रह गया। और स्वयं क्या हुआ, स्वयं ही गृह वगैरह घर में ही काल के द्वारा उपसंहृत समाप्त कर दिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं घर में ही मर गए, गृह वगैरह उपसंहृत, गृह में ही उनका उपसंहार हो गया। इसका मतलब यह है कि पहले के ब्राह्मण घर में नहीं मरते थे, घर में मरने पर दुर्गति होती है, मरने से पहले मनुष्य को वन में चले जाना चाहिए, ऐसे जगह मरना चाहिए जहां शव का भी पता न लगे, नहीं तो स्वजन पाएंगे तो शव को जला देंगे, और इस तरह से शव रहेगा तो कुछ जीवों के काम में आ जाएगा, वो खाएंगे। ये नियम है शास्त्र का, लिखा गया है शास्त्र में कि ब्राह्मण को वन में मरना चाहिए और क्षत्रियों को रण में मरना चाहिए, घर में कभी नहीं। ब्राह्मण को किसी वन में, तीर्थ में, वृंदावन आदि में मरना चाहिए, और क्षत्रियों को युद्ध में, घर पर पलंग पर खाट पर कभी नहीं मरना चाहिए। जैसे ही लोग आएंगे और उनका मुख देखेंगे तो माया है और मरेगी, मरते समय जी को पता चलता है कि अब तो हमारी हालत ठीक नहीं है, मरेंगे तो और ममता बढ़ जाती है। उसे बुलाता है, हमारी बेटी को बुलाओ उसको देख लें, मेरे दामाद को बुलाओ उसको देख लें, तो उसको देख लें, क्यों देख कर करोगे, फोटो खींच कर नहीं जाओगे, क्यों है क्या देख कर करोगे, चेतना तो और दूषित हो जाएगी, वो दूर है यही अच्छा है। स्मरण और सामने जब तक हम ठीक हैं बहुत, तभी तक उन्हें देख लेना चाहिए, मरते समय किसी को नहीं बुलाना चाहिए। मरते समय यदि पुत्र भक्त है तो उसको बुलाना चाहिए कि हरिनाम कीर्तन करेगा, कुछ कान में आवाज आएगी, कथा कहेगा। इस बात पर हमें याद आ गई कि हमारे पिताजी के मृत्यु का समय निकट था, तो उसके 3 दिन पहले वे हमको कहे कि भागवत पढ़ो, तो मैं भीष्म पितामह के महाप्रयाण की कथा पढ़ रहा था और उसको भोजपुरी में उनको समझा रहा था। उसको सुन करके हमारे पिताजी कहे कि हे भगवान हमारी ये गति करी है, हे भगवान हमारी ये गति करी, तो हे भगवान हमारी भी ऐसी गति करना जैसे भीष्म पितामह की हुई, हे भगवान हमारी भी ऐसी गति करना। तो वास्तव में मरने से पहले यह स्थिति चाहिए। लोग बुलाते हैं अपने स्वजनों पर, बोला नहीं जाता है लेकिन फिर भी बोलना चाहते हैं, बोलने की शक्ति नहीं रहती, और कुछ लोग तो बुलवाते हैं, कहिए कुछ इच्छा आपकी हो, और अब वो क्या कहेंगे, और अब इच्छा पूरी करने चले हो लास्ट में कुछ कहिए, खास करके लोग पूछते हैं कहीं धन रख दिए होंगे बता देंगे, नहीं तो बेकार हो जाएगा।
पूछने में मूल सिद्धांत ये होता है। पहले के लोग धान सोना चांदी गाड़ कर रखते थे, अब तो पता चल जाता है कि कहाँ रखे हैं कैसे पासबुक से इससे, लेकिन पहले पता नहीं चलता था। इसीलिए मरने से पहले लोग बहुत फिक्र करके पूछ लेते थे, वो बताते तो वाच्य मानव की न बोलते। भगवत भगवान कपिलदेव कहते हैं कि वाच्य मानव बुलाने पर भी बोल नहीं पाता है बेचारा, बोलना चाहता है हाथ से इशारा करता है बताता है, दशा हो जाती है। घर में कभी नहीं मरना चाहिए, मरने के समय सुखदेव गोस्वामी भागवत चालू करते समय कहते हैं कि जब मृत्यु होने का समय आए पता लग जाए तो धीर पुरुष को घर छोड़ देना चाहिए और तीर्थ में चले जाना चाहिए वृंदावन आदि, वहीं मरेंगे। तो यहाँ ये जो कहा जा रहा है कि स्वयं गृह एवं संघृता घर में ही मर गए, गृह एवं इस बात को सूचित कर रहा है घर में मरना नहीं चाहिए था उस ब्राह्मण को, लेकिन पुत्र की ममता में घर में मर। ऐसे यह निश्चित है कि उस ऐसे पुत्र की ममता में मरे थे कि उनको वैकुंठ तो निश्चित मिलेगा, लेकिन लोक दृष्टि से सुखदेव को संभव रहे कि इस तरह नहीं मरना चाहिए। बेटा में इतना आसक्त होकर घर में मर गया है, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाते पढ़ाते अरे अपना भजन करो क्या पढ़ा रहे उनको, वह तो अपना भजन करते नहीं थे, रात दिन पुत्र में मन लगा था, घर में ही मर गए। पुत्र में इतनी ममता थी कि वे घर में मर गए, अनधिगत मनोरथ, मनोरथ पूरा हुआ नहीं। और काल तो सदा सावधान है, कालेना अप्रमत्तेना, काल प्रमत्त नहीं है, हम प्रमत्त रहते हैं, हम असावधान रहते हैं, लेकिन काल सावधान है, काल सावधान है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारी मृत्यु कहाँ रुक गई है, आती नहीं है, खास करके गांवों में बूढ़ी बूढ़ी माता जी लोग हम लोगों से कभी कभी कहती है पता है ना हमारे मऊवत कहाँ हेरा गोलावत नहीं खे, ऐसे कहते वो हमारी मृत्यु पता नहीं भूल गई हमको मारना कि जमराज भी हमको निकाल दिए रजिस्टर से पता नहीं। तो नहीं नहीं वो रजिस्टर है पूरा, तो मरना चाहती हो क्या? हाँ एकदम, हाँ बच्चा मरे तो एकदम मन बा, हाँ तो एकदम मरना चाहती हूँ। हमने कहा चलो बिजली का करंट है पकड़ो, मरना चाहती ना ही मरब स्वाभाविक मृत्यु से, मरना होगा तो स्वाभाविक मृत्यु से मरूंगी कि बिजली का करंट छूकर क्यों मरूंगी। हम लोग कहते हैं वो निश्चित अप्रमत्त है, वो टाइम आ रहा है निश्चित है किस मिनट पर किस सेकेंड पर तुम्हें मरना पड़ेगा। हम लोग वो लोग कहते हैं कि पता नहीं जमराज हमारा कागज हेरवा दिए हैं मरने का, कागज हेरा गया भूल गया हमारा कागज भूल गया है, कागज नहीं भूल गया है, काल सदा सावधान है। यहां लिखा है कालेन अप्रमत्तेना, काल कभी लापरवाही नहीं करता है, एक क्षण भी देर नहीं होगी, ठीक टाइम पर मृत्यु आ जाए। तो अप्रमत्त काल के द्वारा घर में ही उपसंहृत, और प्रमत्त थे काल, अप्रमत्त था और वे प्रमत्त थे, अप्रमत्तेना प्रमत्त उपसंहृत प्रमत्त थे। प्रमत्त का अर्थ होता है, मत्त का अर्थ होता है मतवाला, प्रमत्त का अर्थ होता है प्रकृष्ट मत, जो कोई मद पी लेता है, मद पी लेता है तो उसको मत्त कहते हैं, वो उसको विवेक नहीं रह जाता है, लेकिन शराब से भी ज्यादा मतवाल, शराब पीने से भी ज्यादा हम लोग माया का मदिरा पी करके मतवाले, इसलिए प्रमत्त कहा जाता है। घर के काम धंधा में भूले हुए हैं, मृत्यु की भी शुद्धि नहीं है, अपना दिन भी नहीं गिनते हैं कि हम कितना दिन के हो गए, कितना वर्ष के हो गए, हम मर जाएंगे, ये हो गया, शरीर कमजोर होने लगा, ये होने लगा, तो ऐसा जो न समझता है उसको प्रमत्त कहते हैं। शराब पीने वाले को मत्त कहेंगे और ऐसे घर गृहस्थी में बेहोश रहने वाले को प्रमत्त कहते, प्रकृष्ट मत, उससे भी ज्यादा मत वाला असावधान, तो घर में ही मर गया। इसे सीखने की बात, घर में नहीं मरना चाहिए, अर्थात स्वजनों के बीच में नहीं मरना चाहिए, यह कहने का आशय है। और स्वजन मतलब शरीर के संबंध, तब हुआ क्या, जब पिताजी की मृत्यु हो गई तब उनकी मां उनके साथ सती हो गई, जठभरत जी की माँ। अथ जबी असी द्विज सती स्वगर्भ जातम मिथुनम सपत्निया उपन्यस्य स्वयं अनुसंस्थया पति लोकम अगा। देखिए जठभरत जी के पिता कितने महान थे और माँ कितनी सती साध्वी स्त्री थी। ऐसी सुंदर माँ मिली थी इनको। तो जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इनकी दो माताएं थी, एक सौतेली माँ थी जिसके 9 पुत्र थे और एक छोटी माँ के ये थे। तो इनकी माँ अपने इस पुत्र को अपनी बहन के जी में सौंप दी। एक ही सती हुई, क्योंकि पुत्र थे इसलिए दोनों को सती होना स्वीकार नहीं किया गया। शास्त्र का नियम है कि यदि पुत्र छोटे छोटे हों तो सती नहीं होना चाहिए। जैसे माद्री सती हो गई और कुंती महारानी रह गई बच्चों का पालन करने के लिए। वे दोनों तैयार थी। माद्री कह रहे थे कि मेरे अपराध से मेरे पति की मृत्यु हुई है पांडु महाराज की, इसलिए मैं सती बनूंगी। और कुंती कह रही थी कि मैं बड़ी रानी हूं, मेरा अधिकार है सती होने का, मैं सती होऊंगी। तो माद्री ने प्रार्थना किया कि बहन तुम जीवित रहो, तुम बच्चों का पालन ठीक से कर सकती हो। मुझमें एक कमी है कि मैं यदि जीवित रहूंगी तो अपने पुत्रों में और तुम्हारे पुत्रों में मैं भेद करूंगी, क्योंकि मेरी चेतना बहुत लो है, बहुत नीचे। लेकिन तुम इतना उदार हो कि तुम अपने पुत्रों में, मतलब युधिष्ठिर अर्जुन भीम में और मेरे पुत्रों में, नकुल सहदेव में कोई अंतर नहीं करोगी। मैं जानती तुम सबके प्रति सम हो, इसलिए तुम जीवित रहो। तो कुंती इस प्रकार की महान महिला थी। वास्तव उसके दृष्टि में कभी भेद नहीं था कि युधिष्ठिर मेरा बेटा है और नकुल सहदेव दूसरी स्त्री की। इसीलिए तो भगवान उसको अपनी बुआ कहते। तो भगवान की बुआ थी इतनी महान, जिसने विपत्ति का वर मांगा, भगवान से प्रेम मांगा। तो एक सती हुई थी। इसी तरह से जठभरत जी के पिताजी की पत्नियां दो थी, तो इनमें इनकी माँ सती हुई। जिसमें सती हो रही थी तो स्वगर्भ जातम मिथुनम, अपने पुत्र को और पुत्री को, मिथुनम को, जोड़ा को सपत्निया उपन्यस्य रखी। बहुत बढ़िया से बता करके कि बहन इनकी रक्षा करना है, तुम्हारा तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारी बेटी है, इसकी रक्षा करना, मैं पति के साथ सती हो रही हूँ, ऐसा कह करके। और स्वयं अनुसंस्थया, अनुसंस्था कहते हैं सहमरण, चिता में एक साथ जल करके पति लोकम अगा, पति लोक को गई, पति जहां गए वहां गए। यह स्त्री का सौभाग्य होता है। स्त्री बिना साधन के भी यदि पतिव्रता है तो वहीं जाएगी जहां पति गया। इसके द्वारा यह भी सिद्ध होता है कि यदि पति भक्त है और पत्नी उसकी सेवा कर रही है तो वह भी पति के यहां जाएगी। यदि पति भगवान के धाम में जाएंगे तो वह भी जाएगी, ये नियम है। तो इस तरह प्रत्येक पति को सावधान रहना चाहिए कि उसके जीवन के साथ उसकी पत्नी का जीवन भी जुड़ा हुआ है, तो अपने को अधोगति में नाम ले जाए, नहीं तो पत्नी को भी ले जाएगा। इसलिए पति को सावधान रहना चाहिए। इस श्लोक में द्विज सती शब्द का प्रयोग किया गया। द्विज सती, ब्राह्मण की सती पत्नी, पतिव्रता पत्नी। इस तरह की माँ मिलना बहुत है, दुर्लभ है संसार में। यह शब्द तो केवल इस देश में लागू हो सकता है, सती शब्द। सती शब्द आज रेयर हो गया, और हम लोगों के भारत वर्ष में भी कुछ लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे कि स्त्रियां सती होती थी। ये बहुत दुर्लभ है इस तरह का माँ मिलना, जिसके गर्भ में राजर्षि भरत को रहने का सौभाग्य मिला था। तो माँ इतनी महान थी। जन्म का बहुत बड़ा महत्व है। यदि माता पिता महान हैं तो यह जन्म बहुत दुर्लभ है, ये खास करके वैष्णव ब्राह्मण। तो अब जठभरत जी मातृ पितृहीन हो गए, माँ भी चली गई और पिताजी भी चले गए। तो ऐसे उनके रहने से भी इनके लिए तो कोई अंतर था नहीं, तो देह से बिल्कुल परे थे। लेकिन प्रकट रूप से अब ये पिता के स्नेह को खो बैठ। पिताजी चले गए, पितरुल प्रते भ्रातृ एवं अतत प्रभाव विदह। जब पिताजी मर गए तब इनके भाई क्या व्यवहार किए इनके साथ, यह बता रहे हैं। तो भाइयों की भी ममता होती है, भाई के प्रति बहुत ममता थी बच्चों, इनके भाइयों की। तो उन्होंने सोचा कि पिताजी इसको विद्वान बनाना चाहते थे, पंडित बनाना चाहते थे, नहीं बना पाए, तो वे भी प्रयास करने लगे। तो भाई है, छोटा भाई है, इस तरह से रहेगा कैसे काम चलेगा, कोई दिखाओ अस्पताल में या झड़वाओ कहीं किसी ओझा के पास क्या हो गया है। वो लोग पढ़ाने की कोशिश किए, नौ भाई मिलकर पढ़ाना चाहे, लेकिन इनकी एक बात एक कमी थी कि ये त्रय विद्या में पारंगत थे। वेद का जो कर्मकांड विभाग है उसमें वे पारंगत थे, लेकिन पर विद्या में नहीं। पर विद्या मतलब भक्ति। यहां देखिए, त्रय विद्या और पर विद्या दो शब्द प्रयोग किया गया। त्रयम विद्या में परिवर्षित मतया, कर्मकांड में ही उनकी निष्ठा थी। जो भी था वो बड़े पवित्र थे, लौकिक दृष्टि से बहुत पवित्र थे, भगवान के भक्त भी थे, लेकिन फिर भी उनकी मति त्रय विद्या में लगी थी। यज्ञ करना और स्वर्ग प्राप्त करने की अभिलाषा रखना बहुत ऊंचा कर्म करते थे। हत्या, चोरी, व्यभिचार आदि को सपने में भी नहीं जानते थे। लेकिन न पर विद्या, पर विद्या में उनकी रुचि नहीं थी। पर विद्या कहते हैं अप्राकृत विद्या को, भक्ति को, ब्रह्म विद्या या भक्ति, इसमें उनकी मति नहीं लगी थी। तो इन भाइयों ने क्या कहा अपने छोटे भाई को, वो लोग क्या कहते थे, जड़ मति इति, इसकी मति जो है जड़ है, तो उसका नाम ही उन लोगों ने कर दिया जड़ मति। ए जड़ मति, इधर आओ, ए जड़ मति, अत्रागच्छ, मतलब संस्कृत बोलते होंगे इदम कुरु, इदम गृहाणा, यह करो यह लो। तो आपस में वो नौ भाई यही बात करते थे कि वो हमारा भाई जड़ मति है, तो उसकी मति जो है जड़ है। तो भ्रातु अनुशासन निर्बंधक निवृत्त संत, तो पहले तो वे भी पढ़ाए, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते जब देख लिए कि ये जड़ मति है, नहीं पढ़ सकता है, पंडित नहीं बन सकता है, तो अनुशासन निर्बंधात पढ़ाने के अनुशासन के हठ से मुक्त हो गए। अब आग्रह छोड़ दिए भाई, आग्रह छोड़, पिताजी बहुत काल तक आग्रह रखे, मरण पर्यंत वे आग्रह रखे, लेकिन भाई भाई की उतनी ममता थी नहीं, तो ये लोग तत्काल ही आग्रह छोड़ दिए, नहीं पढ़ पाएगा, छोड़ो से। तो पढ़न वो नहीं पढ़ाए, वो छोड़ दिए। अब जड़भरत जी के बारे में कह रहे हैं और दूसरी कथा। सच प्राकृत द्विपद पशु भी उन्मत्त जड बधिर अभिभाष मारो जदा तदनु रूपाणी प्रभाषते कर्माणि च सच कार्य मान परीक्षा करो कि विस्तृत वेतनत व्यांच उपसारित बहु मल्पम बहुमृष्टम कदन बाध्यो हर निंद्रिय प्रीति निमित्तम नित्य निमित्त निमित्त स्वसिद्ध विशुद्धानुभवानंद स्वात्म लाभाधिगम सुख दुख द्वंद निमित्त असंभावित देहाधिना सच। और जब भाई तो ये सोच रहे थे, और जलभरत जी क्या कर रहे थे, सच प्राकृत द्विपद पशु भी उन्मत्त जड बधिर इति अभिभास मार। जो दो पैर वाले पशु हैं इस संसार में, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये दो पैर वाले पशु द्विपद पशु, ये लोग जड भरत जी को अंधा समझते थे, बहरा समझते थे और उन्मत्त समझते थे। सुखदेव गोस्वामी गाली दे रहे हैं लोगों को, पब्लिक को, देखो ये मूर्ख लोग कुछ भी नहीं उनकी महिमा समझ पाए। ये द्विपद पशु प्राकृत है, जो प्रकृति के भोगों में लगे हुए थे, दो पैर वाले पशु, ये क्या करते थे कि जुट करके कभी कभी उससे उसी तरह की चेष्टा करते थे और अभिभाष मारे बुलवाते थे, ए पागल, ए बहरा, ए अंधा, आपस में कहते थे अंधा है, ये है, वो है, वो हंसते थे। और इस तरह का व्यवहार एक महान देह से मुक्त भक्त के प्रति करते हैं, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दो पैर वाले पशु। तो चार पैर वाले पशु दूसरे होते हैं, लेकिन मनुष्यों को द्विपद पशु कह रहे हैं।
जो इस तरह भक्तों की जड़ चर्चा को न समझ पाए वो दो पैर वाला पशु है। भक्तों की रहनी को वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ है न बुझा। समझदार विज्ञ व्यक्ति भी वैष्णवों की क्रिया मुद्रा को समझ नहीं पाता है। ठीक जट भरत जी जैसे गुणातीत पुरुष के प्रभाव को क्या समझे। तो अभिभाष से मार वे लोग गुलवाते थे, बहरा कहकर के फिर भी कुछ बात करते थे खूब जोर से, जोड़ मती। तो वो जैसा बुलवाते थे तो वो भी ऐसा करते थे, तबा तबले रूपाणी प्रभाषित। वो जैसे बोलते थे तो वो भी उसी तरह का नाटक करते थे जिससे वो डिस्टर्ब न करें भाग से। कर्माणी चौक कार्य माड़ा और ले जाते थे पकड़ कर काम करने के लिए, काम करने के लिए ले जाते थे। चलो बहुत मोटा तगड़ा है काम करेगा, तो जो भी ले जाता था चले जाते थे। परिच्छया काम करते थे लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, क्योंकि उनको शरीर का अनुसंधान नहीं रहता था। क्या काम करना है नहीं करना है, खाना है नहीं खाना है, कुछ नहीं जानते। शरीर का कभी स्मरण आता नहीं। तो परिच्छया करे दूसरे की इच्छा से काम करते थे। विष्टि तो उत्पन्न हुआ चाहे बेगार हो चाहे वेतन से, कोई ले जाता था अपने यहां काम करने के लिए। तो विष्टि तो कहते हैं बेगार, बेगार का अर्थ बिना वेतन के जो काम कराया जाता है उसको बेगार कहते हैं। काम करा करके दिन भर में कुछ न देना है, जैसे जर मती था भैंस को बैल की तरह क्या करेगा, कुछ काम कराओ ले चलो ऐसे काम करेगा। गांव के लोग पकड़ कर ले जाते थे और चले जाते थे। तो बिना वेतन के भी काम करते थे और कभी कभी वेतन होता, कभी वेतन भी मिल जाता था। यह वेतन का अर्थ है भोजन, वेतन का अर्थ कोई अब दो चार रुपया पैकेट में नहीं, पैकेट के पास था भी नहीं। नए रुपया का मतलब जानते थे, कांचन जो जीवन मुक्त पुरुष होता है उसके लिए मिट्टी का ढेला या पत्थर और सोना एक समान। तो भोजन ही इनका वेतन था बस, और वो लोग भी जानते थे कि बस भोजन भर इनका वेतन। उपसादित अल्पम बहुमृष्टम कदम माध्य भारत। कभी कभी उनके वेतन में भोजन मिल जाता था और कभी कभी मांगते थे, किसी के यहां खड़े हो जाते थे तो समझता था भोजन चाहिए इसको, दे दो दे दो बेचारा पागल है दे दो, वो दे देते थे। तो अल्पम चाहे अल्प मिले और चाहे बहु, कभी कभी बहुत थोड़ा मिलता था मधुकरी जैसा थोड़ा। ये ध्यान रखना चाहिए कि उस समय के जितने लोग थे सबके घर में प्रसाद बनता था। आजकल जैसा अंडा लहसुन प्याज नहीं बनता था, इसलिए किसी के घर में भी खा सकते थे। आज का आदमी तो सोच ही नहीं सकता है कि पहले ऐसा समय रहा होगा कि सबके घर में प्रसाद बनता होगा, है ना। मानसिकता छाती जा रही है। जैसे कुछ वर्षों में शायद हमारे देश के भी लड़के ये नहीं जानेंगे कि बैठ कर पेशाब किया जाता था पहले, ये बैठ कर भी पेशाब करना चाहिए। जैसे विदेश में इसको कोई नहीं जानता है कि बैठ कर भी पेशाब किया जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बाथरूम देखिए कहीं भी बैठ कर पेशाब करने की कोई व्यवस्था नहीं। तो कुछ काल के बाद लोगों से कहा जाएगा कि बैठ कर पेशाब करना चाहिए तो वो कहेंगे बिल्कुल अटपटान बात है, ये ऐसा कभी हुआ नहीं कभी हुआ नहीं है तो बेकार बात है। तो इसी तरह से इतना कंडम भोजन लोग कर रहे हैं, कुत्सित पदार्थ खा रहे हैं, अंडा जहां तहां मांस मदिरा, वे कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक दिन सब लोग प्रसाद खाते होंगे विष्णु का। तो वे खाते थे, कभी कभी बहुत मिलता था। कहीं मान लीजिए किसी के घर कोई फेस्टिवल चल रहा है, विवाह हुआ है, कुछ हुआ है, तो खूब परोस दिया अपना, पा लिए, बहुत पा लेते थे। अगर ज्यादा मिलता था तो ज्यादा खा लेते थे। ये खाते थे तो जीभ को पता नहीं चलता था वो कैसा है, वो केवल शरीर को चलाने के लिए। जैसे हम बस के भीतर तेल डालते हैं तो बस को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है,
और ड्राइवर भीतर बैठा है तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, ऐसे उसको तृप्ति नहीं होगी। तो पेट में अन्न डाला जाता था वो गाड़ी चलाने के लिए, उनको पता नहीं चलता था कैसा है क्या है, स्वाद के लिए कभी खाए नहीं, तो थोड़ा मिलता था तो उसी में संतुष्ट हो जाते थे, और बहुत मिलता था मिष्टम कदन्नम या बहुत मीठा स्वादिष्ट मिलता था वो भी खा लेते थे, और कदन्नम बहुत कुत्सित अन्न मिलता था वो भी खा लेते थे। इंद्रिय प्रीति निमित्तम, इंद्रिय प्रीति के लिए कभी नहीं खाए, जीभ के लिए कभी नहीं खाए, जीने के लिए खाए, फूड फॉर लाइफ, फूड फॉर टंग नहीं जीने के लिए खा रहे थे, जीभ के लिए नहीं। हम लोग तो बहुत ज्यादा जीभ के लिए खाते हैं, नहीं तो इतना मसाला की क्या जरूरत है, विविध प्रकार के मसाला डाल डाल करके वो तो आंत खराब हो जाती है, खाते हैं, जीभ के लिए कभी नहीं खाए। नित्य निवृत्त निमित्त स्वसिद्ध विशुद्धा अनुभवानंद स्वात्म लाभाधिगम सुख दुख दोनों निमित्त असंभावित देहाभिमान। क्यों, किस कारण से इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं खाते, तो कहते नित्य निवृत्त निमित्त स्वसिद्ध विशुद्धा अनुभवानंद स्वात्म लाभाधिगम नित्य निवृत्त निमित्त स्वसिद्ध नित्यम सदा निवृत्तम निमित्तम जस्मा स उत्पादक शून्य स सिद्ध अभिव्यंजक शून्य विशुद्ध केवलो यो अनुभव स एव आनंद रूप स्वात्मा तस् लाभ एवं भूत अहम इति ज्ञान तस्य अधिगम प्राप्ति रीति जस स। तो जो जीव का अपना आनंद है उसको स्वात्म स्वात्मानंद कहते हैं। वास्तव में जो सुख है वह भीतर से मिल रहा है जीव को, आत्मा से आता है, और वह आत्मा का जो आनंद है वो निमित्त से निवृत्त है। निमित्त से निवृत्त है का मतलब है कि उसका कोई कारण नहीं है, किसी कारण से आत्मा में आनंद नहीं आएगा, आत्मा नित्य ही आनंदमय है, यह अर्थ है। इस संसार में हमको जिह्वा को आनंद मिलता है तब जब हम कुछ खाते हैं, लेकिन आत्मा का जो आनंद है वह नित्य है, उसमें कोई निमित्त नहीं है, कारण नहीं है, इसीलिए वह नित्य निवृत्त निमित्त है। तो ऐसे आत्मा के अनुभव से, भगवान के चिंतन आदि से जो आनंद मिल रहा था, उस आनंद में भी वो रहते थे। इतना उत्कृष्ट आनंद मिल रहा था कि बाहर का आनंद लेने के लिए इनका मन कभी गया नहीं। तो उसी को कहते हैं कि विशुद्धानुभवानंद स्वात्म लाभाधिगम, जो विशुद्ध आत्मा का आनंद है उस आनंद को प्राप्त करके मग्न थे। मतलब भगवान से मिलने वाला आनंद इनको मिल रहा था तो इसलिए संसार की इच्छा नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि द्वंद निमित्त सुख दुख असंभावित देहाभिमान, स्वादिष्ट या अस्वादिष्ट, मान सम्मान या सुख दुख जिस देहाभिमान से होता है वो देहाभिमान इनको था ही नहीं। देह को कभी मैं मानते नहीं थे, देह में मैं बुद्धि थी ही नहीं, इसलिए ठंडा गर्मी मान अपमान या स्वादु अस्वादु का इनको पता नहीं चलता था। तो संसार देह से परे थे और भगवान में पूरा मन लगा हुआ था, उधर का आनंद मिल रहा था और इधर का कोई अनुसंधान नहीं था, इस कारण से ये पूर्णतः संतुष्ट थे। शीतोष्ण बात वर्षेषु वृष एव अनावृतांग, चाहे गर्मी का मौसम हो या शीत शीत उष्ण, शीत उष्ण बात वर्षेषु चार चीज है, भयंकर जाड़े में या भयंकर गर्मी के दिन में या आंधी हो या वर्षा हो, वृष युवा सांड की तरह बैल की तरह अनावृत अंग बिल्कुल नग्न रहते थे, कभी कुर्ता नहीं पहने, कभी चादर नहीं ओढ़े और घर में कभी नहीं रहे बाहर, अनावृत अंग। पीना, पीना मतलब मोटा, बहुत तंदुरुस्त थे, मोटा थे, गठीला अंग। संघनन अंग, संघनन अंग का थे कि इनके अंग बहुत कड़े थे, लूज नहीं थे, शरीर बहुत गठीला था, मोटे थे। स्थंडिल संवेशन अनुमर्दन नाम अर्जन रजसा, स्थंडिल का थे जमीन पर ही बैठते थे, संवेशन करते थे, सोते थे, जमीन पर ही रहते थे, और कभी अनुमर्दन, कभी शरीर में उबटन नहीं लगाए, तेल नहीं लगाए, साबुन नहीं लगाए, अमज्जन स्नान भी नहीं किए, इसलिए इनके शरीर पर रज चिपका था।